पाकिस्तान के साल 2020-21 के बजट में कोरोना वायरस के खिलाफ इकदाम के लिए मजमूई तौर पर 112 अरब रुपए रखे गए हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से परेशान है, हत्ता कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक भी, और पाकिस्तान न सिर्फ कोरोना की वजह से परेशान है बल्कि इकतसादी तौर पर भी मुश्किलात का शिकार है, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी और हम कोरोना लॉकडाउन से मुतासरा अपनी मईशत को दोबारा बहाल करने के लिए इकदाम करते रहेंगे। ये अल्फाज हैं पाकिस्तान के वजीर मुमलिकत बराए रेवन्यू हमाद अजहर के, जिन्होंने साल 2020-21 के लिए पाकिस्तान का बजट असम्बली में पेश कर दिया। इस बजट में कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए, मगर साथ ही तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी नहीं किया गया। माहरीन कहते हैं इस बजट में हुकूमत की कोई दूररस मनसूबाबंदी नजर नहीं आती। ताजिर तबका भी बजट से ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आता, मगर बाज़ माहरीन का ख्याल है कि हर बजट के बाद महंगाई में इजाफा होता है, मगर इस मरतबा कोरोना वायरस की वजह से कीमतों के मुस्तहकम होने का सवाल ही नहीं था। पाकिस्तान के इस बजट के बारे में बात करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सरबरा, पाकिस्तान इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल और नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन डॉक्टर आबिद क्यूम सुलेरी कहते हैं कि रिवायती तौर पर मुल्क के सालाना बजट में 4 D's का ख्याल रखा जाता है।
एक होता है उसमें कर्जों की अदायगी या डेट सर्विसिंग, फिर उसमें दफा होता है डिफेंस, उसके बाद डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो हुकूमत चलाना, और डेवलपमेंट। इस दफा इन 4 D's के अलावा 4 L's जो है उन्होंने भी हमें अफेक्ट किया है। पहला L जो है वो लाइव्स है, कोरोना की वजह से जो जिंदगियां खतरे पे हैं। दूसरा L जो है वो लाइवलीहुड्स है, जो रोजगार छिन रहे हैं लोगों के। तीसरा जो है वो लॉकडाउन है, लॉकडाउन अगर करवाना चाहे हुकूमत तो तब भी पैसे दे, और अगर लॉकडाउन नहीं करवाना चाहती, बिजनेस चलाना चाहती है तो फिर भी पैसे देना पड़ेंगे। और चौथा L जो कि ईस्ट अफ्रीका और पाकिस्तान, ईरान, इंडिया को इस वक्त अफेक्ट कर रहे हैं, वो लोकस्ट हेट टड्डी दल जो कि हमारी एग्रीकल्चर को बड़े बुरे तरीके से मुतासर कर रहे हैं। तो हुकूमत जो है वो 4 D's को तो उसको एड्रेस करना था, ये जो एक्स्ट्रा उसके साथ आगे उसको भी उसको डील करना है। और इनमें सोने पे सुहागा ये कि जो रेवेन्यू के जो थे जराए वो श्रिंक होते चले जा रहे हैं, यानी अब आपको टैक्सेस लगाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप नए टैक्सेस लगा लें। ये किया जा सकता है कि टैक्स बेस बढ़ा दी जाए, लेकिन टैक्स बेस तो पिछले 72 साल से नहीं बढ़ सकी।
उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि वो इस बजट को कोरोना से मुतासरा सूरत हाल का बजट करार देकर इसमें कोई तरक्याती अहदाफ बयान न करती, क्योंकि उनका पूरा करना मुमकिन ही नहीं है।
इस बजट में ग्रोथ को बहुत ज्यादा हुकूमत उससे ऑब्सेस नजर आती है। हुकूमत को बड़ा इसको कैंडिडली कहना चाहिए था कि ये सर्वाइवल बजट है, ये क्रिटिकल बजट है जो कि कोविड से बचने के लिए, लोकस से बचने के लिए प्लान किया जा रहा है। इस साल की जो हमारी जो आउटगोइंग फिस्कल ईयर है उसकी GDP ग्रोथ हुई है -0.4%, जो कि शायद बढ़ जाएगी लोकस के अटैक की वजह से। 30 जून तक एग्रीकल्चर जो कि पॉजिटिव था, मुझे लग रहा है कि वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा, तो ये शायद -1% पर चली जाए। तो -1% या इवन -0.4% से एकदम 2.1% का टारगेट जहन में रख लेना, ये ओवर एम्बिशियस भी है और अनरियलिस्टिक भी है।
पाकिस्तान के इस बजट के बारे में माहरीन की आरा मुख्तलिफ हैं, मगर सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत की मुश्किलात गैर मामूली हैं और इसकी वजह से एक छोटी मईशत का सुकड़ना कोई अनहोनी बात नहीं। डॉक्टर आबिद क्यूम सुलेरी कहते हैं,
और इस एमरजेंसी ईयर में यकीनी तौर पे ये एक टेस्ट केस होगा हुकूमत के लिए कि वो हम दिखा सकें कि जी ठीक है, लोन तो लिया लेकिन उसको जो हमने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि क्रॉनिकली अंडर फंडेड है उसकी कैपेसिटी बिल्ड की, या हम ये बता सके कि इस वक्त हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो इतनी बढ़ गई है, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजनेटेड बेड्स की प्रोविजन इतनी ज्यादा हो गई है, सोशल प्रोटेक्शन जो है वो हम इतने ज्यादा लोगों तक पहुंच गए हैं या मिनिमम यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन तक आए हैं।
पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस बैंक के साबिक सदर ऑफ मार्केटिंग और फाइनेंस के कंसल्टेंट फाइक हुसैन कहते हैं कि मौजूदा हालात में ऐसा ही बजट आ सकता था। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की आमदनी और अखराजात का फर्क 3,500 अरब रुपए का है और अब ज़र मुबादला और बरामदात में भी कमी हुई है तो हुकूमत के पास मजीद कर्ज लेने के सिवा कोई चारा नहीं, खा ये कर्ज स्टेट बैंक से लिया जाए या आम बैंकों से।
नहीं, ये तो अभी ऑल रेंज ये कर्ज देखे ना, जब टैक्सेस नहीं है आप ले रहे हैं, आपको जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू बाहर से जो रेमिटेंसेस आ रहे थे वो यकीनन बहुत कम होंगे इस बार, तो जाहिर बात है कि वो सारा दारोमदार जो है वो बैंकों के ऊपर लोन पर चला जाता है कि आप बोरो करें। अब आप किस हद तक बोरो करेंगे, इस वक्त जो डिफरेंस है आपके इनकम का और एक्सपेंस का तो करीब 3,500 बिलियन रुपीज का है।
डॉक्टर सुलेरी कहते हैं हुकूमत के पास इसके सिवा चारा नहीं कि वो मजीद कर्जे ले, मगर इससे भी जरूरी ये बात है कि वो कर्जे स्टील मिल्स जैसे नाकाम होते इदारों को संभालने के लिए नहीं बल्कि सही मानों में तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए जाएं।
जो रेवेन्यू पूरे करने के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे जाना पड़ेगा, हुकूमत को कर्जे लेने पड़ेंगे, और ये सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत ही नहीं बल्कि इस वक्त जो ग्लोबल रिसेशन है उसमें तकरीबन तमाम डेवलपिंग कंट्रीज में वो कर्जे लेने पर मजबूर हैं। हमने भी $1.4 बिलियन जो है वो IMF के रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट से लिया है, $500 मिलियन जो है वो अभी ADB ने परसों दिया है कोविड से निपटने के लिए, वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन दे रहा है, इसी तरीके से पेरिस क्लब से $1.8 बिलियन के लोन जो है रीशेड्यूल करवाए हैं।
उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए बैरूनी कर्जों से ज्यादा अंदरूनी मुल्क लिए गए कर्जों की अदायगी मुश्किल हो रही है। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों की अदायगी में पाकिस्तान को G20 के प्रोग्राम के तहत पेरिस क्लब की जानिब से मोहलत दी गई है। ये मोहलत एक साल के लिए है और डॉक्टर आबिद सुलेरी कहते हैं कि ये भी काफी है, हुकूमत को कुछ वक्त मिल जाएगा।
ये मेरा ख्याल है कि सफिशिएंट है, चूंकि हुकूमत पाकिस्तान ने कॉन्शियसली जो अपने कमर्शियल लोन्स थे उनको रीशेड्यूल नहीं करवाया, उससे हुकूमत की क्रेडिट रेटिंग जो है वो मुतासर होती, तो जो पेरिस क्लब के $1.8 बिलियन के हैं दिसंबर तक का रीशेड्यूलिंग होगी है और थोड़ा सा ये कुशन जो है वो मिल जाएगा।
माहिरे इक्तिसादियात कैसर बंगाली का कहना है कि इससे पाकिस्तान को वक्ती सहूलत हासिल हुई है इसलिए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
बस वो वक्ती फायदा है जो रिपेमेंट करनी है, अब क्योंकि अब तो हम कर्जा ले रहे हैं सिर्फ कर्जा वापस करने के लिए, पिछले 1990s से जो है हम सिर्फ प्रोग्राम लोन्स ले रहे हैं, प्रोजेक्ट लोन्स नहीं ले रहे। प्रोग्राम लोन का मतलब ये है कि जो बजट का खसारा है वो पूरा हो जाता है हुकूमत का और जो कर्जे वापस करने होते हैं उसके पैसे मिल जाते हैं, कोई असासे तो बनते नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट लोन हम ले नहीं रहे। तो ये जो पेरिस क्लब दे दें या रोम क्लब दे दें या वाशिंगटन क्लब दे दें ये तो बस वक्ती तौर पे जो अगली पेमेंट आएगी हमारी बारी आएगी तो उसमें हम पेमेंट कर देंगे, बस यही फर्क पड़ता है और तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट में एशिया स्टडीज के डायरेक्टर शकील अहमद रामे कहते हैं
कि अभी जो हमारे हालात हैं या हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि जितने भी हम स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करें तो वो कम है, यानी कि वो उनकी श्रिंक होने की बात हो रही है, तो इन हालात में मुझे नहीं लगता कि कोई रिलीफ होगा। ये बात नहीं है कि गवर्नमेंट देना चाहती है, बात है गवर्नमेंट मजबूर होगी कि उनके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी कम हो चुके हैं।
और फाइक हुसैन कहते हैं पाकिस्तान ने इन कर्जों की अदायगी के लिए सिर्फ एक साल की मोहलत हासिल की जबकि उनके ख्याल में ऐसा कम से कम 3 साल के लिए होना चाहिए था ताकि पाकिस्तान के पास अदायगी के काबिल होने की बेहतर गुंजाइश होती।
कि अभी वो बर्डन नहीं आया और डिफर हो गया है, लेकिन इन्होंने जो एक साल का टाइम लिया है ये बहुत गलत लिया है, ये कम से कम 3 साल होना चाहिए क्योंकि ये इफेक्ट जो आया है ये इतना आसान नहीं वर्ल्ड वाइड।
फायक हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान का जरिए शुबा मुल्क की आमदनी बढ़ा सकता है मगर इसकी जानिब तवज्जो नहीं दी जाती।
नहीं, उसमें भी बहुत कुछ किया जा सकता है, यकीनन किया जा सकता है, एग्रीकल्चर में भी क्योंकि ये तो कंट्री एग्रीकल्चर के, मतलब एग्जांपल मैं आपको एक दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो दालें हैं वो इंपोर्ट होती हैं, एग्रीकल्चर कंट्री हम कहते हैं इसको, मेरा ख्याल में अबाउट $2 बिलियन की जो है ये इम्पोर्ट होती है, चंद जो मेजर आइटम्स है उसमें एक ही आता है। इसी तरह से आपका पाम ऑयल है, 70 साल से ये एक कंट्री बने हुए 70 साल हो गए हैं, कोस्टल लाइन हमारे पास मौजूद है लेकिन 70 साल से हम इंपोर्ट कर रहे हैं पाम ऑयल, हम उसको ग्रो नहीं कर पाए, तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा ने मुल्कों को नई मसनूआत की राह दिखाई है مگر پاکستان میں ایسا کوئی رجحان نظر نہیں آتا۔ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی مختص کردہ رقم کے بارے میں سارک، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر اور ڈائریکٹر کامن ویلتھ میڈیکل ٹرسٹ ہیلتھ انیشیٹو ڈاکٹر عمر ایوب کہتے ہیں، یہ رقم اس وقت ناکافی سمجھی جائے گی جب روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کووڈ کے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اور صحت کا دیگر عملہ کووڈ کا شکار ہو رہا ہے اور بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔
دیکھیں جی، ڈیو اپولوجیز، گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ انتہائی ناکافی ہیں۔ کل تک کی فگرز جو تھی 122,000 ہم کراس کر چکے تھے، آج شاید 125 یا 127 ہوں، کیونکہ آج کی لیٹسٹ رپورٹ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کل 122,500 کیسز تھے پاکستان میں، جو کہ چائنا کو ہم لانگ ٹائم اگو بیٹ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک مایوسی کی بات ہوئی ہے وہ انفارچونیٹ کہ گورنمنٹ سرونٹس کی تنخواہیں نہیں بڑھی، اور تمام پبلک سیکٹر ہاسپٹل کے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں، اور ان میں ایک مایوسی کی لہر دوڑ کے۔ تیسری بات، ابھی میں آرمی والا اس میں مر جاتا ہے یا کوئی پولیس والا مر جاتا ہے سوسائیڈل ایکٹیویٹیز میں یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں، تو ان کی فیملی کے لیے ریزنیبل کمپنسیشن اناؤنس کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ سیکیورلی، ملک کے لیے تو ہر کوئی لڑنے کے لیے تیار ہے، کرونا ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں کیونکہ سب لوگوں کی فیملیز ہیں تو وہ اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری ڈیتھ ہو جائے تو ہماری فیملی کا کیا بنے گا۔ تو کوئی کمپنسیشن، ابھی تک 40 کے قریب ڈاکٹرز کی صرف ڈیتھ ہو چکی ہے، 2300 کے قریب اسٹاف انفیکٹڈ ہے اس وقت، کوئی کمپنسیشن گورنمنٹ نے نہیں، نہ بجٹ میں اناؤنس کی کے دی جائے گی، نہ پہلے کسی کو دی گئی، اور نہ ہی کوئی اس جانب سوچ کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ ملک میں کرونا کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے، ڈاکٹر نہ بچے تو علاج کون کرے گا۔
اسپیسیفک لوکیشنز چاہیے تھی بجٹ میں، کہ ہر صوبے کے ساتھ این ایف سی ایوارڈ میں ہیلتھ کو ایک اسپیشل، اب آپ دیکھیں جی ڈی پی کا کیا پورشن دیا گیا ہیلتھ کو، سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ جی ڈی پی کا اس دفعہ پورشن جو تھا وہ کوئی 6-7% ہوتا یا 8% ہوتا، وہی 2-2.5% کے ارد گرد گھوم رہا ہے، تو اس میں کرونا بھی شامل ہے اور باقی ڈیزیز بھی شامل ہے۔ تو آئی سی اے ویری بلیک پکچر فار پاکستان، آئی تھنک دس بجٹ از ناٹ سفیشینٹ۔ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ حکومت کو اس وقت فائنینشیل پرابلمس ہیں، لیکن اس وقت پرائیورٹی یہ ہے کہ اگر ہم زندہ ہوں گے تو کام کریں گے، اگر زندہ ہی نہیں رہیں گے تو اکانومی کہاں سے ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ ملک کو کرونا کی تباہی سے بچانا ہے تو حکومت کو کوئی واضح پروگرام سامنے لانا ہوگا اور اس پر سختی سے عمل کروانا ہوگا، ورنہ موت ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، کیا ہم اس کا استقبال کریں گے؟ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔